بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ ریڈیو تہران ہے, اسلامی گنراجیہ ایران کی آواز.
زہرا زیدی اور ساتھی ریڈیو تہران کے سبھی شروتاؤں کی سیوا میں سلام پرستت کرتے ہیں. شروتاؤں, آج بھی اپنے کارکرم کا آرمبھ ہم قرآن مجید کی پوتر آیتوں کی تلاوت اور ان کے انواد سے کریں گے. آج کے کارکرم میں آپ سورہ اسراء کی ساتویں, آٹھویں اور نویں آیتوں کی تلاوت اور انواد سنیں گے قاری سعید توسی سے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها, فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. صدق الله العلي العظيم.
اللہ کے نام سے جو اتیانت کرپاشیل اور دیاوان ہے, یدی تم کوئی بھلائی کرو گے تو وہ اپنے لیے ہی کرو گے, اور یدی کوئی برائی کرو گے تو وہ بھی اپنے لیے ہی کرو گے. تو جب دوسرا وچن پورا ہونے کو آئے گا तो एक शक्तिशाली गुट आएगा जिसके लोग तुम्हारे चेहरों को बुरा बना देंगे और मस्जिदुल अक्सा में प्रविष्ट हो जाएंगे, जिस प्रकार से कि वे पहली बार प्रविष्ट हुए थे, और वे जिस वस्तु को भी अपने नियंत्रण में लेंगे उसे बड़ी कठोरता से तबाह कर देंगे। शायद तुम्हारा पालनहार तुम पर दया करे, और यदि तुम पलट आए तो हम भी पलट आएंगे, और हमने नरक को काफिरों के लिए एक कड़ा कारावास बनाया है। निश्चित रूप से यह कुरान सबसे सुदृढ़ राह की ओर मार्गदर्शन करता है, और भले कर्म करने वाले ईमान वालों को ये शुभ सूचना देता है कि उनके लिए बड़ा बदला है।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। आज बुधवार है और दिवस की 28, शवाल की 16 और मई की 18 तारीख। श्रोताओ, हमारा ये कार्यक्रम आप 60वें में 25 मीटर बैंड बराबर 11,860 किलोहर्ट्ज पर सुन रहे हैं। हमें आशा है कि हमारा आज का प्रसारण भी आपको अवश्य पसंद आएगा। ताज़ा समाचारों से अवगत होने के लिए हमारी वेबसाइट देखना न भूलें, पता है parstoday.com/hi। श्रोताओ, हमारे आज के कार्यक्रम के रूपरेखा नोट कर लें। सदा की भांति आप सबसे पहले देश विदेश के समाचार सुनेंगे, उसके पश्चात राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम होगा, और उसके पश्चात उमर खयाम के सम्मान दिवस के अवसर पर आप सुनेंगे हमारा विशेष कार्यक्रम, और सभा का अंतिम कार्यक्रम होगा आजकल। श्रोताओ, ये तो थी हमारे आज के कार्यक्रम की रूपरेखा, और अब आप कुछ ही क्षणों में रेडियो तेहरान से समाचार सुनेंगे। और अब आप मरियम मेहरदादी और मोहम्मद मेहदी से समाचार सुनिए।
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। करबला में इमाम हुसैन अलैहि सलाम के हरम के निकट अल अकीला ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह के प्रांगण में आग लग गई। ईरान और सऊदी अरब के विदेश मंत्री बगदाद में मुलाकात करेंगे। रूस ने इसराइली युद्धक विमान पर हमला किया। आतिवादी हिंदुओं ने मस्जिद में आग लगा दी। और अब आप विस्तार से समाचार सुनिए।
इराक के पवित्र नगर करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम के निकट निर्माणाधीन प्रांगण में आग लग गई। समाचार एजेंसी फारस की रिपोर्ट के अनुसार इराकी सूत्रों ने घोषणा की है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम के निकट एक निर्माणाधीन प्रांगण में आग लग गई। इराक के सूत्रों ने खबर दी है कि ये आग प्रांगण में कालीनों को रखने वाले भाग में लगी। इस खबर के प्रकाशित होने के बाद घोषणा की गई थी कि अग्निशमन दल की गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंचकर आग को नियंत्रित किया। इस अग्निकांड के बारे में संभावित जानी व माली क्षत के बारे में विवरण प्राप्त नहीं हुआ है। अभी तक आग लगने का कारण ज्ञात नहीं हो सका है।
निकट भविष्य में ईरानी विदेश मंत्री इराक की राजधानी बगदाद में सऊदी अरब के विदेश मंत्री से मुलाकात करेंगे। फारस न्यूज एजेंसी के अनुसार ईरानी विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान शीघ्र ही इराक में सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान से मुलाकात करेंगे। इस्लामी गणतंत्र ईरान की संसद मजलिस शुराए इस्लामी के राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के सदस्य ने फारस न्यूज से बात करते हुए कहा कि तेहरान और रियाज के बीच आरंभिक समझौता तय पा गया है। निकट भविष्य में हमारे और सऊदी अरब के विदेश मंत्रियों के बीच एक मुलाकात होगी। करीमी कुद्से ने कहा कि इस मुलाकात में द्विपक्षीय मुद्दों और दूतावासों के खुलने के साथ साथ क्षेत्रीय मुद्दों विशेषकर यमनी संकट पर भी विचार विमर्श किया जाएगा।
अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चुनावी कैंपेन के एक सहायक व सलाहकार ने स्वीकार किया है कि 41 वर्षों के इतिहास के अध्ययन के बाद वो इस परिणाम पर पहुंचे हैं कि अमेरिका के मुकाबले में ईरान विजेता है। समाचार एजेंसी फारस की रिपोर्ट के अनुसार लिबनानी मूल के अमेरिकी विश्लेषक वलीद फारिस ने एक लेख में कहा है कि 41 वर्षों के इतिहास के अध्ययन के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इस्लामी गणतंत्र ईरान की सरकार अमेरिका के मुकाबले में विजयी रही है। वलीद फारिस इस समय अमेरिका के मुखर ईरान विरोधी विश्लेषक हैं। उन्होंने एक अमेरिकी समाचार पत्र न्यूज एमएक्स में लिखा है कि मैंने ईरान के इस्लामी क्रांति की सफलता के आरंभ से लेकर अब तक ईरानी सरकार और अधिकारियों के क्रियाकलापों का अध्ययन किया है जो इस बात का सूचक है कि अब तक ईरान अमेरिका के मुकाबले में विजयी रहा है। इसी प्रकार उन्होंने लिखा है कि ईरान ने देश के भीतर अपनी सैनिक शक्ति मजबूत कर ली है और पश्चिम एशिया में उसकी पकड़ व प्रभाव ध्यान योग्य है। इसी प्रकार ईरान विरोधी इस विश्लेषक ने सवाल किया कि क्यों ईरान विजेता है, उसके विजयी होने की वजह क्या है, क्या इस प्रक्रिया को खत्म किया जा सकता है, अगर किया जा सकता है तो कैसे। इस ईरान विरोधी विश्लेषक ने निराधार दावा करते हुए आतंकवाद, अर्धसैनिक अमेरिकी नीति, ईरानी प्रभाव व पकड़ और पश्चिमी देशों द्वारा परमाणु समझौते के समर्थन को अमेरिका के मुकाबले में ईरान की जीत का कारण बताया है। इसी प्रकार वलीद फारिस ने दावा किया कि ईरान न केवल अरब देशों बल्कि पश्चिमी देशों में भी पैठ बना लेगा। उन्होंने अंत में लिखा है कि ईरान अभी विजेता है और तब तक विजेता रहेगा जब तक अमेरिकी नीतियां ईरानी राजनेताओं के समर्थन के अर्थ में रहेंगी।
इसराइली टीवी के चैनल 12 ने सूचना दी है कि रूसी सैनिकों ने S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम से इसराइली युद्धक विमानों पर हमला किया। समाचार एजेंसी फार्स की रिपोर्ट के अनुसार ज़ायोनी संचार माध्यमों ने रिपोर्ट दी है कि रूसी सैनिकों ने पहली बार S-300 डिफेंस सिस्टम से सीरिया में इसराइली युद्धक विमानों की ओर मिसाइल फायर किया। इसराइल टाइम्स और इसराइली टीवी के चैनल 12 ने सूचना दी है कि पिछले सप्ताह इसराइली युद्धक विमानों ने सीरिया के पश्चिम उत्तर में हमला किया था जिन पर रूसी सैनिकों ने S-300 डिफेंस सिस्टम से प्रक्षेपास्त्र फायर किया था। इसराइली संचार माध्यमों के अनुसार रूस की ओर से सीरिया में इसराइली युद्धक विमानों को निशाना बनाना इस बात का सूचक हो सकता है कि इसराइल के बारे में रूस के दृष्टिकोण बदल गए हैं। इसराइल टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि गत शुक्रवार को यह घटना उस समय पेश आई जब इसराइली युद्धक विमानों ने सीरिया के पश्चिम उत्तर में स्थित मिसयाफ शहर के निकट कई बार बमबारी की। सीरिया की सरकारी न्यूज एजेंसी साना ने इस बारे में रिपोर्ट दी थी कि इस हमले में सीरिया के 5 नागरिक शहीद और 7 घायल हुए थे। इसी बीच सीरिया के एक जानकार सूत्र ने बताया कि गत रात्रि लगभग 8:20 पर ज़ायोनी शासन ने मिसाइल फायर करके सीरिया के कई क्षेत्रों को लक्ष्य बनाया।
ये समाचार आप रेडियो तेहरान से सुन रहे हैं। इसराइल के मीडिया सूत्रों ने खबर दी है कि सेना वेस्ट बैंक के ऑपरेशन में युद्धक हेलीकॉप्टरों के प्रयोग का जायजा ले रही है। फार्स न्यूज एजेंसी के अनुसार इसराइली मीडिया सूत्रों ने बताया है कि जेनिन कैंप में सशस्त्र संघर्ष में सेना की विशेष यूनिट के एक अधिकारी के घायल होने के बाद सेना वेस्ट बैंक में युद्धक हेलीकॉप्टरों के प्रयोग का जायजा ले रही है। इसराइली चैनल 12 ने रिपोर्ट दी है कि सेना की योजना वेस्ट बैंक में बड़े ऑपरेशन में शूटिंग के तरीकों को बदलने की है। अरब 48 वेबसाइट के अनुसार सेना का दावा है कि दर्जनों फिलिस्तीनी बंदूकधारी इसराइली सेना पर फायरिंग में व्यस्त थे और इसलिए उनका मुकाबला करने के लिए फायरिंग के स्तर को बढ़ाना जरूरी है।
ज़ायोनी शासन के पूर्व प्रधानमंत्री यहूद बाराकर ने ऐतिहासिक घटनाओं की ओर संकेत किया और कहा कि 8वें दशक में जिस तरह से ज़ायोनी सरकार खत्म हो गई उसी तरह मैं इस बात से चिंतित हूं कि कहीं निकट भविष्य में इसराइल का भी अंत न हो जाए। समाचार एजेंसी फार्स की रिपोर्ट के अनुसार एहूद बाराकर ने समाचार पत्र एदियूत अहरनुत से वार्ता में कहा कि इतिहास इस बात का साक्षी है कि यहूदियों की कोई भी सरकार 80 साल से अधिक बाकी नहीं रही, किंतु 2 स्थानों पर और 8वें दशक में उनका भी विभाजन व अंत हो गया। पहली सरकार दाऊद रजा के दौर में और दूसरी हशमुनियों के काल में। اسی پرکار یہود باراک نے کہا کہ اسرائیل کے گٹھن کا بھی آٹھواں دشک چل رہا ہے اور میں اس بات سے چنتت ہوں کہ آٹھویں دشک کا بھی شاپ پہلے والی یہودی سرکاروں کی بھانتی کہیں اسرائیل کو بھی اپنی چپیٹ میں نہ لے۔
روس کے راشٹرپتی نے ماسکو کے ارجا وبھاگ پر یوروپیہ سنگھ کی اور سے لگائے گئے پرتبندھوں کی اور سے سچیت کیا ہے۔ روس کے راشٹرپتی ولادیمیر پوتین نے یوروپیہ سنگھ کی اور سے روس کے ارجا چھیتر پر لگائے گئے پرتبندھوں کے نکارتمک پربھاؤں کے بارے میں سچیت کیا ہے۔ روس پر لگے کئی پرتبندھوں کی وجہ سے یوروپ کی ارتھ ویوستھا بری طرح پربھاوت ہو گئی ہے۔ روس کے راشٹرپتی ولادیمیر پوتین نے دیش کے ارجا وبھاگ کے ادھیکاریوں سے ملاقات میں کہا یوروپیہ سنگھ چاہتا ہے کہ وہ دیش کے گیس اور تیل سیکٹر پر پرتبندھوں کو کڑا کر دے، اور ان کا یہ فیصلہ پوری طرح سے راجنیتی سے پریرت اور امریکہ کے دباؤ کی وجہ سے ہے۔ روسی راشٹرپتی نے کہا کہ یوروپیہ سنگھ کے نئے روس کی ارجا کی سپلائی پر پرتبندھ سے یورپ کے ارتھ ویوستھا پر نکارتمک پربھاؤ پڑیں گے۔
بھارت کے مدھیہ پردیش راجیہ میں مسلم ویرودھی بھاوناؤں کی ایک اور گھٹنا میں منگلوار کو ہنسک بھیڑ نے نیمچ شہر کی ایک مسجد میں آگ لگا دی۔ بھارتی سوتروں کے انوسار مورتیوں کو ایک درگاہ کی دیوار پر رکھا گیا تھا۔ گھٹنا کے بعد نیمچ پولیس نے علاقے میں کرفیو لگا دیا ہے۔ سوشل میڈیا پر ساجھا کیے گئے ویڈیو میں بھیڑ سڑکوں پر ہنگامہ کرتی دکھ رہی ہے، کیونکہ کچھ دنگائیوں کو حراست میں لیا گیا تھا۔ پولیس ادھیکاریوں نے پشتی کی کہ دنگائی مسجد میں آگ لگانے اور مسلم گھروں پر پتھراؤ کرنے میں شامل تھے۔ ٹویٹر پر ساجھا کیے گئے ایک انیہ ویڈیو میں نیمچ شہر کے پولیس ادھیکشک سورج کمار نے گھٹنا کا وورن ساجھا کیا۔ دنگا پربھاوت علاقے میں میڈیا کو سمبودھت کرتے ہوئے ایس پی نے کہا کہ اس علاقے کے پاس ایک درگاہ ہے جہاں ہنومان کی مورتی استھاپت کی گئی تھی، جس سے دونوں گٹوں میں وواد ہو گیا۔
اور انت میں یہ سماچار کہ بھارت نے کابل میں اپنا دوتاواس دوبارہ کھولنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ بھارتیہ سوتروں نے بھارت سرکار کے حوالے سے بتایا ہے کہ نئی دلی کابل میں اپنا دوتاواس دوبارہ کھولنا چاہتی ہے، لیکن طالبان کو آدھیکارک روپ سے سویکار کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ بھارتیہ میڈیا کا کہنا ہے کہ سرکار نکٹ بھوش میں افغانستان میں اپنا دوتاواس دوبارہ کھولنے پر غور کر رہی ہے، لیکن طالبان سرکار کو سویکار کرنے کی کوئی یوجنا نہیں ہے۔ انڈین ایکسپریس نے جانکار سوتروں کے حوالے سے بتایا ہے کہ بھارتیہ سرکشا ادھیکاریوں کی ایک ٹیم زمینی استھتی کا جائزہ لینے کے لیے فروری میں کابل کے دورے پر گئی تھی۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے سماچار سماپت ہوئے۔ یہ تہران ہے اسلامی گنتانت ایران کی آواز۔
راجنیتک چرچا۔
दोस्तों, राजनीतिक चर्चा के दैनिक कार्यक्रम के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं कायम रिजवी का सलाम स्वीकार कीजिए। ईरान और क्यूबा के संबंध, लाखों फिलिस्तीनियों के विस्थापन की याद और भारत में तेजी से बढ़ती महंगाई पर आज हम कार्यक्रम में विस्तार से बात करेंगे। ईरान का कहना है कि हम क्यूबा के साथ स्थायी और दीर्घकालीन आर्थिक संबंधों के इच्छुक हैं। एक समीक्षा के साथ उपस्थित हैं अख्तर अब्बास।
क्यूबा के उप प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि मंडल में शामिल क्यूबा के राष्ट्रपति के विशेष दूत रिकार्डो काब्रिसास रोविज ने ईरानी अधिकारियों से भेंट वार्ता की। क्यूबा के राष्ट्रपति के विशेष दूत ने दोनों देशों के संयुक्त आर्थिक सहयोग की आयोग की बैठक में भाग लेने के लिए तेहरान का दौरा किया। क्यूबा के इस वरिष्ठ अधिकारी की यात्रा का मकसद दोनों देशों के आर्थिक संबंधों के स्तर को बढ़ाना था। क्यूबा के उप प्रधानमंत्री और ईरान के वित्त और आर्थिक मामलों के मंत्री ने अपनी मुलाकात में दोनों देशों के आर्थिक सहयोग में वृद्धि के लिए सहयोग का क्रम जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। इस्लामी गणतंत्र ईरान के वित्त और आर्थिक मामलों के मंत्री सैयद एहसान खानदूजी ने इस मुलाकात में कहा कि इस्लामी गणतंत्र ईरान की सरकार लैटिन अमरीकी देशों विशेषकर क्यूबा के साथ स्थायी मजबूत और लंबे आर्थिक संबंधों की स्थापना की इच्छुक रही है। इस मुलाकात में क्यूबा के उप प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के विशेष दूत ने आर्थिक विस्तार तक पहुंचने के लिए अपने देश की प्राथमिकताओं और आर्थिक विकास कार्यक्रमों का ब्यौरा देते हुए कहा कि आर्थिक घेराबंदी और कोविड-19 के गंभीर खतरे जैसे तत्वों के क्यूबा की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले खतरों की ओर इशारा किया और कहा कि पर्यावरण और यूक्रेन की जंग ने क्यूबा की आर्थिक खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र को बहुत अधिक प्रभावित किया है। क्यूबा के इस वरिष्ठ अधिकारी ने इसी प्रकार देश की महत्वपूर्ण आर्थिक परियोजनाओं में ईरानी कंपनियों के तकनीकी अनुभवों से लाभ उठाने पर तत्परता का ऐलान किया। वर्ष 1979 में इस्लामी क्रांति की सफलता और ईरान में इस्लामी व्यवस्था के गठन के बाद तेहरान ने क्यूबा सहित साम्राज्यवादी देशों के विरोधी देशों के साथ राजनीतिक संबंध स्थापित करने के लिए कदम बढ़ाए। पिछले कई दशकों के दौरान तेहरान और हवाना के संबंध बहुत अधिक विस्तृत हुए हैं और इस्लामी गणतंत्र ईरान तथा क्यूबा के सहयोग में विस्तार दोनों देशों के हितों को दृष्टिगत रखकर किया जा रहा है।
फिलिस्तीन के चौतरफा समर्थन से साम्राज्यवादी शक्तियां अपना आपा खोती जा रही हैं। काजिम जादे की रिपोर्ट को स्वर दे रहे हैं अहमद अब्बास।
May 14, 1948
चौहत्तर साल पहले 14 मई 1948 को ब्रिटेन की मदद से ज़ायोनियों ने 7.5 लाख फिलिस्तीनियों यानी 2/3 आबादी को विस्थापित करके इसराइल की स्थापना कर दी थी।
It's the Nakba, which means...
इस दिन को नकबा या बदकिस्मती का दिन कहा जाता है। ब्रिटेन के लोगों को लगता है कि उनकी सरकार ने चूंकि इसराइल की स्थापना का अपराध किया, इसलिए फिलिस्तीनियों का समर्थन करना उनकी जिम्मेदारी है और उन्हें दूसरों से बढ़कर ये समर्थन करना है। प्रदर्शनकारी ने कहा कि 1948 में बालफौर घोषणा पत्र जारी होने के बाद से ही फिलिस्तीनियों के खिलाफ अपराधों का मैदान तैयार हो गया। ब्रिटेन और अमेरिका जिन्होंने इसराइल की स्थापना करवाई उसके सारे अपराधों में भागीदार हैं। बालफौर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर ब्रिटेन की एक इमारत के भीतर हुआ। खेद की बात है। अल जजीरा टीवी चैनल की पत्रकार के शव ने जो इसराइली अपराधों की ताजा शिकार हैं, ये साबित कर दिया कि इसराइल के रूप में भयानक बदकिस्मती पिछले 74 साल से फिलिस्तीनियों के गले पड़ गई है। इन्हीं हालात की वजह से अब सारे फिलिस्तीनी एकजुट हो गए हैं और उन्होंने आपसी मतभेद को भुला दिया है। एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि यहाँ केवल मुसलमान प्रदर्शन के लिए एकत्रित नहीं हुए बल्कि ईसाई, यहूदी और अन्य मत के लोग सभी फिलिस्तीनियों के समर्थन के लिए एकत्रित हुए हैं। जो चीज साम्राज्यवादी ताकतों को परेशान कर देती है वो फिलिस्तीन का चौतरफा समर्थन है। यहाँ तक कि ईरान जैसा देश जो शिया बहुल देश है, सुन्नी बहुल फिलिस्तीन का समर्थन करता है। इसराइल के समर्थक देशों की इच्छा के विपरीत सारे लोग फिलिस्तीन की आजादी के लिए एकजुट हो गए हैं। इस समय जब बहुत सी अरब सरकारें अपनी सत्ता बचाने के लिए इसराइल से समझौते कर रही हैं, तो फिलिस्तीन की आजादी करीब नजर आती है। एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि फिलिस्तीन आजाद होगा। इस समय फिलिस्तीन के समर्थन में लाखों लोग सड़कों पर निकल रहे हैं। यहाँ तक कि अमेरिका और ब्रिटेन में भी लोग फिलिस्तीन की आजादी के लिए काम कर रहे हैं। हालात बदल चुके हैं और अपार्थाइड खत्म होकर रहेगा। हर साल दर्जनों समर्थन اسرائیل اور اس کے اپارتھائڈ شاسن کے خلاف اور فلسطینیوں اور بیت المقدس کے سمرتھن میں ہوتے ہیں۔ ان میں قدس دیوس کے پردرشن وشیش روپ سے مہتوپورن ہیں، جن میں بھاری سنکھیا میں لوگ شرکت کرتے ہیں۔ لندن سے آئی آر آئی وی کے لیے مشتبہ قاسم زادے کی رپورٹ۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ اور آپ سن رہے ہیں کاریکرم راجنیتک چرچا۔ سماچاروں سے ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے گھٹناؤں کی تہ تک پہنچنے اور وبھن آیاموں کو چھونے کی کوشش۔ कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा।
और श्रोताओं, अब रुख करते हैं हम भारत का। کھانے پینے کی چیزوں کے داموں میں بے تحاشا وردھی سے بھارت میں عام لوگوں کو پیٹ پالنا بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ بھارت میں خودرا مہنگائی کی در پچھلے 8 میں اپنے سب سے اونچے استر پر پہنچ گئی ہے۔ نئی دلی سے شمشاد کاظمی کی رپورٹ۔
بھارت میں لگاتار بڑھتی ہوئی تھوک اور خودرا مہنگائی سے عام لوگوں کو کٹھنائیوں کا سامنا ہے۔ اپریل 2022 میں تھوک مہنگائی کی در بڑھ کر 15.08% پر پہنچ گئی ہے، جبکہ پچھلے ورش اسی اودھی میں مہنگائی در 10.74% رہی تھی۔ اس سمے تھوک مدراسفیتی میں وردھی پچھلے 17 میں سب سے اونچے استر پر پہنچ گئی ہے۔ سبزیوں، پھلوں، دودھ اور تیل سے لے کر روزمرہ کی سبھی آوشک وستوؤں اور کھادیہ پدارتھوں کے مولیوں میں بھاری وردھی ہوئی ہے اور عام لوگوں کی خریداری کی کھمتا پربھاوت ہوئی ہے۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ مہنگائی بڑھنے کا پربھاو ان کے ویاپار پر بھی پڑ رہا ہے۔
پیسہ نکال کر راضی نہیں ہے۔ جو ریفائنڈ آج سے 2 پہلے 90 کا تھا، وہ 190 ہو گیا ہے۔ ہر چیز میں 25-30-40% تک تیزی آئی ہے۔ دکانداری میں بہت فرق پڑ گیا ہے۔
ایسے اداس ہو رہے ہیں لوگ، پریشان ہیں، بہت زیادہ پریشان۔
مہنگائی ہم کیا کریں گے، 1 یعنی 1 والا آدھی کلو لے رہا، آدھی کلو والا 2.5 مال لے کر رہا۔ مہنگائی ہوگی تو بندے میں پبلک چلا دی کام۔
خودرا مہنگائی کی در بھی پچھلے 8 میں سب سے اونچے استر پر پہنچ گئی ہے، اور مئی ورش 2014 کے بعد خودرا مہنگائی کی در 7.79% تک پہنچ گئی ہے۔ مہیلاؤں کا کہنا ہے کہ مہنگائی سے ان کی رسوئی کا بجٹ کافی پربھاوت ہو رہا ہے، اتہ سرکار کو چاہیے کہ اس اور بھی دھیان دے۔
تو ہمارا راشن کا سامان پہلے 5,000 میں آتا تھا، وہ ابھی ہمارا 10,000 میں آ رہا ہے۔ سیدھا تیل اتنا مہنگا ہو گیا، پہلے فارچون 100 کا آتا تھا، ابھی وہ 180-190 کا آ رہا ہے۔ تو ہر چیز میں مہنگائی ہے، تو یہ کم تو اویس ہونی ہی چاہیے۔
بھارت میں ایندھن اور پیٹرولیم پدارتھوں کے مولیوں میں بھی کافی وردھی ہوئی ہے۔ دیش میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کے لیے جہاں وپکش نے کیندر سرکار کی اس کے انوسار غلط آرتھک نیتیوں کو ذمہ دار بتایا ہے، اور دوسرے انوشک مدوں کو چھیڑ کر اس مہتوپورن مدوں سے جنتا کا دھیان ہٹانے کا آروپ لگایا ہے، وہیں کیندر سرکار کا کہنا ہے کہ روس اور یوکرین کے یدھ کے کارن انتراشٹریہ بازار میں کچے تیل اور پراکرتک گیس کے مولیوں میں وردھی سے دیش میں مہنگائی کی در میں وردھی ہوئی ہے، جسے کم کرنے کے پریاس کیے جا رہے ہیں۔ شمشاد کاظمی، ریڈیو تہران، دلی۔
اسی کے ساتھ راجنیتک چرچا کا دینک کاریکرم یہیں پر سماپت ہوتا ہے۔ دعا दोस्तों, ये थी राजनीतिक चर्चा जिसे अभी आपने सुना। ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लगा इस बारे में आप हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों, सभा के दूसरे भाग में अब हम साप्ताहिक कार्यक्रम आजकल पेश करने जा रहे हैं, किंतु उससे पहले प्रस्तुत है उमर खय्याम के बारे में एक विशेष कार्यक्रम।
दोस्तों, उमर खय्याम के सम्मान दिवस पर विशेष कार्यक्रम के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं मरियम मेहरदादी और मोहम्मद मेदी का सलाम स्वीकार कीजिए।
आज 28 उर्दी बहिश्त अर्थात 18 मई है और आज के दिन को उस महान हस्ती की याद में मनाया जाता है जिसने ईरानी कैलेंडर को संकलित किया है। वो महान हस्ती 5वीं हिजरी कमरी अर्थात 11वीं शताब्दी के ईरान के महान शायर, विद्वान, गणितज्ञ और खगोल शास्त्री उमर खय्याम हैं। उमर खय्याम वो महान हस्ती हैं जो न केवल ईरान बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मशहूर हैं। उमर खय्याम का 427 हिजरी शमसी बराबर 1048 ईस्वी में निशापुर में जन्म हुआ था। खय्याम की उपाधि संभवतः इसलिए उन्हें दी गई है क्योंकि उनके पिता निशापुर में तंबू सिलते थे।
उमर खय्याम का जन्म उस समय हुआ था जब राजनीतिक दृष्टि से अस्थिरता का माहौल था। ये वो समय था जब एक तरफ आले बुए की सरकार का अंत हो गया और सत्ता की बागडोर सलजुकिकों के हाथ में आ गई थी और दूसरी ओर सलीबी युद्ध आरंभ हो चुका था और इस्माइली संप्रदाय ईरान के राजनीतिक वातावरण में दाखिल हो चुका था। इन सब हालात में उमर खय्याम ईरान के निशापुर नगर में धर्मशास्त्र, दर्शन शास्त्र, तर्कशास्त्र और गणित जैसे विषयों की शिक्षा प्राप्त करने में लग गए और 22 साल की उम्र में वे गणित के क्षेत्र में एक किताब लिखने में सफल हो गए। अधिकांश ईरानी और दुनिया के बहुत से लोग उमर खय्याम को एक शायर के रूप में जानते हैं, किंतु इस बात में कोई संदेह नहीं है कि पहले वो महान विद्वान, हकीम और गणितज्ञ हैं, उसके बाद शायर हैं। यही वजह है कि यूनेस्को ने भी इतिहासकारों का अनुसरण करते हुए उन्हें मध्ययुगीन शताब्दी के गणितज्ञ का नाम दिया है। उमर खय्याम की अधिकांश किताबें अरबी भाषा में हैं क्योंकि उस समय इस्लामी जगत की भाषा अरबी थी।
वर्तमान समय के ईरानी गणितज्ञ गुलाम हुसैन मुसाहिब उमर खय्याम के संबंध में कहते हैं, उमर खय्याम वो पहले ईरानी हैं जिन्होंने नक्षत्र व खगोल शास्त्र के बारे में शोध व अध्ययन किया है और उसके संबंध में ध्यान योग्य काम किया और नक्षत्र की महत्वपूर्ण गुत्थियों को सुलझाया। ये सही है कि उमर खय्याम गणित के क्षेत्र में विशिष्ट दक्षता रखते थे, पर साथ ही पूरे विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि उन्होंने खगोल शास्त्र के संबंध में भी उल्लेखनीय काम किया है।
जब उमर खय्याम ने अपनी पहली किताब ख्वाजा निजामुल मुल्क को उपहार में भेंट की तो इसके बाद उन्होंने उमर खय्याम को इस्फहान बुला लिया और वो सुल्तान जलालुद्दीन मलिक शाह सलजुकी के दरबार में काम करने लगे। उमर खय्याम लगभग 18 वर्षों तक इस्फहान में रहे और इस अवधि में उन्होंने दुनिया का सबसे सूक्ष्म कैलेंडर संकलित किया जिसे फारसी भाषा में गाहनामा कहा जाता है। जिस समय उमर खय्याम ने जलाली नाम का कैलेंडर बनाया उस समय उनकी उम्र मात्र 31 साल थी और ईरानी आज भी उनके कैलेंडर से लाभ उठा रहे हैं। जलाली या हिजरी शमसी दुनिया का सूक्ष्मतम कैलेंडर है और इसे महीनों का पता लगाने के अलावा साल बदलने का सही समय भी ज्ञात हो जाता है।
दोस्तों, ये जानना आपके लिए रोचक होगा कि साहित्य, शेर, गणित और खगोल शास्त्र उमर खय्याम के जीवन के महत्वपूर्ण आयाम हैं, परंतु ये पूरे नहीं हैं। उमर खय्याम दर्शन और तर्क शास्त्र की भी गूढ़ जानकारी रखते थे। इन विषयों के बारे में उन्होंने कई किताबें भी लिखी हैं। बहुत से विशेषज्ञ उमर खय्याम को दर्शन शास्त्र में इब्न सीना का उत्तराधिकारी मानते हैं। इस प्रकार उमर खय्याम की संगीत के क्षेत्र में भी अच्छी पकड़ थी। इसके अलावा उन्होंने ईरान के इतिहास के बारे में भी नवरोज नामा नाम की एक किताब भी लिखी है। चूंकि उमर खय्याम ने विभिन्न क्षेत्रों में ईरान और ईरानी समाज की बहुत सेवा की है, इसलिए 28 उर्दी बहिश्त को उनके सम्मान में उमर खय्याम दिवस के रूप में मनाया जाता है।
उमर खय्याम एक दक्ष शायर थे। उनकी सुंदर चौपाइयां शेर और साहित्य की दुनिया में उनकी बेहतरीन यादगार के रूप में आज भी बाकी हैं। प्रतीत ये हो रहा है कि उमर खय्याम ने शेरों का चयन व्यक्तिगत रुचि व बोध के अनुसार किया है और उन्हें प्रकाशित करने में उनकी कोई विशेष रुचि नहीं थी। इसी प्रकार ये भी संभव है कि उमर खय्याम ने अपनी विशेष आइडियोलॉजी और समय के हालात की वजह से पोशीदा रहने और प्रसिद्ध न होने को ही प्राथमिकता दी थी। उमर खय्याम के जो शेर हैं साहित्यिक सुंदरता के अलावा उनके बहुत गहरे अर्थ हैं और वे शेर दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में उमर खय्याम के दृष्टिकोण के भी परिचायक हैं। हाफिज, सादी और मौलाना जैसे ईरान के दूसरे महान शायरों के विपरीत उमर खय्याम ने अपने शेरों को बहुत ही सादी व स्पष्ट भाषा में बयान की है और उनकी यही सादी शैली इस बात का कारण बनी है कि आज उन्हें ईरान और दुनिया में बहुत से लोग एक महान शायर के रूप में जानते हैं।
अलबत्ता ब्रिटिश शायर एडवर्ड की इस कार्य में बहुत भूमिका है। उसने उमर खय्याम के शेरों को अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया है और उसने उमर खय्याम के शेरों की मदद से अंग्रेजी भाषा में शेर भी कहे हैं। यानी अंग्रेजी भाषा में शेर कहने में उमर खय्याम के शेरों से मदद ली है। इस प्रकार उसने एक ओर उमर खय्याम के शेरों का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया तो दूसरी ओर खुद उमर खय्याम के शेरों को आधार बनाकर अंग्रेजी भाषा में शेर कहे और उसने उमर खय्याम का परिचय एक प्रसिद्ध ईरानी शायर के रूप में कराया है।
वास्तव में उमर खय्याम वो महान ईरानी विद्वान, दर्शन शास्त्री, गणितज्ञ और शायर हैं जिन्होंने कम शेर कह कर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ख्याति अर्जित कर ली है। उसकी एक वजह यह है कि उमर खय्याम की चौपाइयां शेर नहीं हैं, बल्कि दर्शन शास्त्र के बारे में उमर खय्याम के विचार व दृष्टिकोण हैं।
लगभग 83 साल की उम्र में उमर खय्याम का निधन हो गया और ईरान के निशापुर नगर में उनको दफन कर दिया गया। निशापुर ईरान के पूर्वोत्तर में स्थित है और वहाँ का फिरोजा बहुत मशहूर है। इस नगर में जहाँ पर उमर खय्याम को दफन किया गया था वो कोई अच्छी जगह नहीं थी, परंतु वर्ष 1956 में उनकी कब्र पर उमर खय्याम नाम की इमारत बनाई गई जिसे देखने के लिए प्रतिवर्ष हजारों ईरानी और गैर ईरानी जाते हैं। उमर खय्याम की समाधि पर जो इमारत बनाई गई है उसका निर्माण हुशंग सेहून नाम के एक दक्ष ईरानी वास्तुकार ने किया है।
हुशंग सेहून ने उनकी समाधि पर इमारत का निर्माण इस प्रकार से किया है कि वो स्वयं ये दर्शाती है कि इमारत के नीचे जो महान हस्ती व पुरुष सो रहा है वो गणितज्ञ, दर्शन शास्त्री और खगोल शास्त्री होने के साथ साथ शायर भी है। उमर खय्याम की समाधि पर जो इमारत बनी है वो 22 मीटर ऊंची है और उसमें 10 स्तंभ हैं और एक स्तंभ की दूसरे स्तंभ से दूरी 5 मीटर है। उमर खय्याम की जो समाधि है वो निशापुर के सबसे आकर्षक पर्यटन स्थलों में से है। इसी प्रकार ये इमारत ईरानी वास्तुकला का बेहतरीन व सुंदर उदाहरण है। उमर खय्याम की समाधि और उसके पास का जो दर्शनीय स्थल है उसका क्षेत्रफल 20,000 वर्ग मीटर है और उसमें लाइब्रेरी, मेहमान खाना और संग्रहालय भी है। इसी प्रकार वहां पर उमर खय्याम की एक प्रतिमा भी लगाई गई है। ¶¶
ईरान में जो संगीत बजाए जाते और प्रचलित हैं उनमें से एक का नाम खयाम खानी है। खयाम खानी ईरान के दक्षिण में और बू शहर प्रांत में बहुत अधिक प्रचलित है। ईरान के दक्षिणी क्षेत्र और प्रांत संगीत की दृष्टि से बहुत समृद्ध क्षेत्र हैं और जो भी संगीत आपको चाहिए वो वहाँ आपको मिल जाएंगे। बू शहर प्रांत में लोग खुशी के अवसरों पर खयाम खानी करते हैं। उमर खयाम के विचार और दृष्टि में दुनिया गुजर जाने की जगह है, यहाँ कोई भी नहीं रहेगा। यहाँ जितना हो सके परलोक के लिए अच्छा काम कर ले, वहाँ पर लोगों के कर्म ही काम आएंगे। वहाँ पर दुनिया के पद स्थान संपत्ति और प्रसिद्धि आदि एक भी काम नहीं आएगी।
पैगंबर इस्लाम की मशहूर हदीस भी है जिसमें आप फरमाते हैं कि दुनिया आखिरत की खेती है, यानी इंसान यहाँ जो बोएगा वहाँ वही काटेगा। परलोक में कोई रिश्तेदारी काम नहीं आएगी, परलोक में इंसान के कर्मों का हिसाब किताब होगा। वहाँ पर इंसान इस बात की तमन्ना करेगा कि काश एक बार मुझे दुनिया में जाने का अवसर मिल जाता तो वहाँ पर महान ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करके आता, मगर किसी को भी दोबारा दुनिया में आने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
परलय के दिन जो लोग स्वर्ग में जाएंगे वो इस बात की तमन्ना करेंगे कि काश और नेक काम कर लिए होते तो स्वर्ग में मुझे और अच्छा स्थान मिलता, और जो लोग नरक में जाएंगे वो इस बात पर बहुत पछताएंगे कि काश गुनाह न किए होते और अमुक व्यक्ति से दोस्ती न किए होते। परलय के दिन बहुत से लोग बुरे लोगों की दोस्ती और गलत कार्यों में उनके अनुसरण के कारण नरक में जाएंगे। नरक कितना बुरा ठिकाना है। जो लोग नरक में जाएंगे वे हमेशा हमेशा दहकती हुई आग में रहेंगे। वहां जाने वालों को कभी भी मौत नहीं आएगी और वे हमेशा हमेशा नरक की आग में जलेंगे। वहां पर कोई भी उनकी मदद नहीं करेगा। नरक में जाने वालों को मुंह के बल उसमें फेंका जाएगा।
इसी तरह जो लोग स्वर्ग में जाएंगे वे हमेशा हमेशा स्वर्ग में रहेंगे और स्वर्ग की नेमतों से लाभ उठाएंगे। स्वर्ग में जाने वालों को कभी भी मौत नहीं आएगी। वहाँ स्वर्ग की सुंदर अप्सराओं से उनका विवाह किया जाएगा। दोस्तों, यहाँ एक बिंदु का उल्लेख करना चाह रहे हैं और वो ये है कि जो महिलाएं स्वर्ग में जाएंगी, महान व सर्वसमर्थ ईश्वर उन्हें जन्नत की हूरों से भी अधिक सुंदर बना देगा।
बहरहाल उमर खयाम वो महान ईरानी दर्शन शास्त्री, गणितज्ञ, खगोल शास्त्री और शायर हैं जिन्होंने ईरान और ईरानी समाज की बेजोड़ और अनमोल सेवाएं की हैं। उन्होंने अपने विचारों से लोगों को ये बता दिया है कि दुनिया रहने की जगह नहीं है, ये कर्म भूमि है न कि फल भूमि। अच्छे और बुरे कामों का फल परलोक में मिलेगा और जितना हो सके इंसान को अपने परलोक के लिए काम करना चाहिए।
तो दोस्तों, कार्यक्रम की समाप्ति से पहले एक बार फिर महान ईरानी महापुरुष उमर खयाम की सेवा में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और आज के कार्यक्रम का अंत पैगंबर इस्लाम के प्राण प्रिय नाती इमाम हसन अलैहिस्सलाम के उस स्वर्ण कथन से कर रहे हैं जिसमें आप फरमाते हैं कि दुनिया गुजरगाह है, यानी गुजरने की जगह है न कि रहने की, और अपनी गुजरगाह से रहने के स्थान की जगह के लिए नेक काम कर लो।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। रेडियो तेहरान सच्चाई और उन सब की आवाज जिनकी आवाज कोई नहीं सुनाता। ताजा समाचारों और सटीक समीक्षाओं के लिए हमसे जुड़िए और हमेशा जुड़े रहिए। और अब रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा का अगला कार्यक्रम।
آج کل
دوستو کارکرم آج کل میں آپ کا سواگت ہے. مریم مہردادی اور قائم رضوی کا سلام سویکار کیجیے. آج کے کارکرم میں ہم فلسطینی پترکار اور الجزیرہ کے رپورٹر شیرین ابو اقلے کی اسرائیلی سینکوں کے ہاتھوں موت کی سمیکشا کریں گے.
شیرین ابو اقلے عرب جگت اور شیتر کی سب سے پرسدھ رپورٹر تھی. ان کا جنم سن 1971 میں بیت المقدس کے ایک عرب عیسائی پریوار میں ہوا تھا. انہوں نے فلسطین کے ایک شہر میں اسکول کی پڑھائی کی اور اچھ شکشا کے لیے جارڈن یونیورسٹی میں سول انجینئرنگ میں ایڈمیشن لیا، لیکن کچھ سمے کے بعد انہوں نے اسے چھوڑ کر پترکاریتا میں ایڈمیشن لے لیا. پڑھائی پوری کرنے کے بعد وہ فلسطین لوٹ آئیں اور سن 1997 میں الجزیرہ چینل سے جڑ گئیں. 11 مئی کو اویدھ ادھیکرت ویسٹ بینک استھت جنین شرنارتھی کیمپ میں اسرائیلی سینکوں کے حملے کو کور کرنے کے دوران اسرائیلی سینکوں کی گولی کا نشانہ بن کر وہ شہید ہو گئیں.
پچھلے 2 دشک سے بھی زیادہ سے فلسطین کی پیڑت جنتا کی آواز وہ بنی ہوئی تھی اور ان کے درد اور دکھوں کو دنیا تک پہنچانے کا کام کر رہی تھی. اپنے جیون کی رپورٹ میں ان کے شبد تھے، زائن شاسن کے سینکوں نے جنین پر دھاوا بول دیا ہے اور ایک گھر کو چاروں اور سے گھیر لیا ہے.
فلسطین میں کوئی گاؤں، شہر یا ایسا شرارتی کیمپ نہیں ہے جہاں سے شیرین نے رپورٹنگ نہ کی ہو. اسی لیے کئی لوگوں نے انہیں شردھانجلی دیتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ فلسطین کا بچہ ان سے پریچت تھا. وہ ہر سمویدنشیل افسر پر گھٹنا استھل پر پہنچ جایا کرتی تھیں، جیسے کہ دوسرے انتفاضہ کے دوران بیت المقدس سے رپورٹنگ، ویسٹ بینک میں فلسطینیوں کے گھروں پر زائونیوں کے حملوں اور حماس تتھا اسرائیل یدھ کو کور کرنا اس میں شامل ہے.
شیرین نے 11 مئی کو جنین میں اسرائیلی سینا کے چھاپے کی ویڈیو رپورٹنگ کرتے ہوئے کہا تھا، جنین میں استھتی بہت سمویدنشیل ہے لیکن یہاں کے لوگوں کے اتساہ میں کوئی کمی نہیں ہے. میں اور میری ٹیم یہاں چل رہی اسرائیلی سینا کی چھاپے مار کاروائی سے پل پل آپ لوگوں کو اوگت کراتے رہیں گے.
گیارہ مئی کو بدھوار کے دن وہ ہمیشہ کی طرح کام پر جانے کے لیے تیار ہوئیں. کسی بھی انجانے خطرے سے بچنے کے لیے انہوں نے پریس کی اپنی جیکٹ پہن لی تاکہ جھڑپ یا ٹکراؤ کی استھتی میں رپورٹنگ کے دوران وہ سرکشت رہ سکیں. اسرائیلی سینک جنین میں ایک فلسطینی ناگرک کے گھر کو گھیر چکے تھے. لاؤڈ اسپیکر سے وہ آتم سمرپن کے لیے کہہ رہے تھے. اچانک اسرائیلی سینی دل نے فائرنگ شروع کر دی اور کچھ ہی دوری پر کھڑی رپورٹنگ کر رہی شیرین کو سیدھے نشانہ بنایا گیا. گولی ان کے چہرے پر لگی اور وہ فوراً زمین پر اوندھے منہ گر پڑی. سوشل میڈیا پر شیئر کیے جا رہے ویڈیو میں گولیوں کی آواز آنے کے بعد خون سے لتپت حالت میں انہیں زمین پر پڑے دیکھا جا سکتا ہے. اسی دوران ان کے ایک ساتھی کے کاندھے پر گولی لگی. گولیوں کی بوچھار کے دوران وہاں موجود کچھ لوگوں نے ساہس دکھاتے ہوئے گھائلوں کو اسپتال پہنچایا، لیکن شیرین کے لیے اب بہت دیر ہو چکی تھی. اسپتال پہنچنے پر ڈاکٹر نے انہیں مرت گھوشت کر دیا.
اس خبر کے پھیلتے ہی پورے فلسطین میں غم کی لہر دوڑ گئی اور وشو بھر کی میڈیا نے اس پر گہرے دکھ کا اظہار کیا. الجزیرہ ٹی وی چینل نے چشمدید گواہوں کے بیانوں کے آدھار پر زائونی سینا کو شیرین کی موت کے لیے ذمہ دار ٹھہرایا اور اسے بنا کسی اکساوے کے ایک نردوش کی ہتیا قرار دیا. حالانکہ اسرائیلی سینا اور زائونی ادھیکاریوں نے اس کی ذمہ داری لینے سے انکار کر دیا اور دعویٰ کیا کہ شیرین کی موت سشستر فلسطینیوں کے ساتھ فائرنگ کے آدان پردان کے دوران ہوئی ہے، جبکہ وہاں موجود پترکاروں اور انیہ لوگوں کا کہنا تھا کہ اسرائیلی سینکوں کے علاوہ وہاں کسی نے کوئی فائرنگ نہیں کی. کئی نیوز رپورٹروں اور سماچار ایجنسیوں نے بھی اسی دعوے کی پشٹی کی ہے۔ فلسطینی پترکار علی سمودی کا بھی کہنا ہے کہ اچانک سے اسرائیلی سینکوں نے ہم پر گولیاں برسانی شروع کر دیں۔ انہوں نے بےرحمی سے شیرین کی ہتیا کر دی، ایک گولی مجھے بھی لگی۔
ایک مہیلا پترکار کی ہتیا تک ہی زائونی سینا کی بربرتا سیمت نہیں رہی، بلکہ ان کی شو یاترا میں شامل لوگوں پر اسرائیلی سینکوں نے لاٹھیاں بھانجی اور یہاں تک کی شیرین کے جنازے کا انادر بھی کیا۔ اسرائیلی سینکوں کے حملے میں کئی لوگ گھائل ہو گئے۔ آخرکار شیرین کو بیت المقدس کے داؤد نبی قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔
اسلامی دیشوں کے سنگٹھن آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن او آئی سی نے بھی الجزیرہ کی رپورٹ شیرین ابو اخلے کی دکھد موت کی نندا کی ہے۔ او آئی سی نے کہا ہے کہ اسرائیل نے ایک بار پھر یہ اپرادھ کر کے انتراشٹریہ قانونوں اور میڈیا کی آزادی کا الگھن کیا ہے۔ او آئی سی کا کہنا ہے کہ یہ اپرادھ سچ کو دبانے کی زائن شاسن کی نیتی کے تحت انجام دیا گیا ہے۔ اسلامی دیشوں کے سنگٹھن نے اس جگھنیا اپرادھ کے لیے زائن شاسن کو ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے انتراشٹریہ سنستھاؤں سے اپیل کی ہے کہ اس اپرادھ کے لیے اسرائیل کو جواب دہ ٹھہرایا جائے اور پترکاروں اور میڈیا کرمیوں کو سرکشا دینے کے لیے ضروری قدم اٹھائے جائیں۔
ہنسا کی رپورٹنگ کرتے ہوئے خطروں کا سامنا کرنے کے سوال پر ایک بار شیرین نے کہا تھا، موت ہمیشہ آپ سے تھوڑی دوری پر ہوتی ہے، مشکل سمے میں میں اپنے ڈر سے باہر نکلتی ہوں، میں نے لوگوں کے قریب رہنے کے لیے پترکاریتا چنی ہے، زمین پر حالات بدلنا سمبھوتہ میرے لیے آسان نہیں ہے، لیکن میں کم سے کم اس آواز کو دنیا تک پہنچا تو سکتی ہوں۔ وہ ان چنندہ فلسطینی مہیلا پترکاروں میں سے ایک تھیں جو گراؤنڈ رپورٹنگ کرتی تھیں، خاص طور پر بیت المقدس اور ویسٹ بینک سے۔ ان کے کچھ سہیوگی انہیں فلسطینی یدھ رپورٹر تک بتاتے ہیں، اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ فلسطینیوں کے لیے عقلے ایک پترکار سے بڑھ کر تھیں۔
اسرائیل لمبے سمے سے اویدھ ادھیکرت علاقوں اور غزہ سے الجزیرہ کی کوریج کی آلوچنا کرتا رہا ہے، اور کئی بار زائنی سینکوں نے اس چینل کے پترکاروں اور رپورٹروں کو رپورٹنگ سے روکا ہے یا ان کے کام میں رکاوٹیں ڈالی ہیں۔ پچھلے سال بیت المقدس میں ویروتھ پردرشنوں کو کور کرنے والے الجزیرہ کے ایک انیہ رپورٹر کو حراست میں لے لیا گیا تھا۔ الجزیرہ کا کہنا تھا کہ اسرائیلی پولیس نے رپورٹر کے ساتھ مار پیٹ کی تھی، جس کی وجہ سے اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا تھا۔
پچھلے ہی سال غزہ پر ہوائی حملوں کے دوران اسرائیل نے ہوائی حملے کیے اور اس عمارت کو زمین دوز کر دیا جس میں الجزیرہ اور کئی ودیشی نیوز چینلوں کے دفتر تھے۔ زائونی سینا کی سپرات کی نندا کرتے ہوئے الجزیرہ کے کارواہک مہا ندیشک نے کہا تھا، غزہ استھت ٹاور پر حملہ کرنا جس میں الجزیرہ اور دوسرے میڈیا سنستھانوں کے دفتر تھے، مانواادھیکاروں اور سوچنا ادھیکاروں کا کھلا الگھن ہے، یہ انتراشٹری استر پر یدھ اپرادھ مانا جائے گا۔ اس سے پہلے سن 2018 میں غزہ میں زائونی سینکوں نے ایک پترکار کو گولی مار کر شہید کر دیا تھا۔
درباگیوش زائونی سینکوں کے ہاتھوں شیرین ابو اخلے کی موت کسی پہلے پترکار کی موت نہیں ہے اور نہ ہی یہ آخری موت ہوگی۔ پراپت آنکڑوں کے مطابق سن 2000 سے لے کر اب تک 45 پترکار زائونی سینکوں کے ہاتھوں شہید ہو چکے ہیں۔ حالانکہ اسرائیل کی بربرتا کا اتہاس اسے کہیں زیادہ پرانا ہے۔ یہاں سب سے حیرت کی بات یہ ہے کہ مانواادھیکاروں اور میڈیا کی آزادی کا ڈھنڈورا پیٹنے والا پشچم اکثر اسرائیل کے ان اپرادھوں پر چپی سادھ لیتا ہے۔ اگر امریکہ اور یوروپ اسرائیل کے اپرادھوں کا سمرتھن کرنا بند کر دیں تو نشچت روپ سے زائونی ان اپرادھوں کو انجام دینے کا ساہس نہیں کر سکیں گے۔
फिलिस्तीन के इस्लामी प्रतिरोध आंदोलन हमास के राजनीतिक कार्यालय के प्रमुख इस्माइल हनिया ने आकिला के श्रद्धांजलि देते हुए कहा है कि ज़ायोनी शासन की बर्बरता, फिलिस्तीनी इलाकों पर कब्जा, जनीन शरणार्थी कैंप पर हमले और मस्जिदुल अक्सा के अनादर के खिलाफ फिलिस्तीनी प्रतिरोध आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि अब तलवार पर खून की जीत का वक्त आ पहुंचा है। यहाँ ये कहना सही होगा कि इसराइल ने अपने अपराधों पर पर्दा डालने के लिए एक अनुभवी महिला पत्रकार को लक्ष्य बनाकर शहीद कर दिया। इससे स्पष्ट होता है कि ज़ायोनी शासन सबसे ज़्यादा सच्चाई के दुनिया के सामने आने से डरता है, जिसके लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहता है।
इस बहादुर और साहसी महिला पत्रकार की हत्या, वो भी रिपोर्टिंग करते वक्त, एक जघन्य अपराध और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और नियमों का खुला उल्लंघन है। ये न केवल मानवाधिकारों का उल्लंघन है, बल्कि अभिव्यक्ति की आज़ादी का मजाक उड़ाना भी है। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत पत्रकारों, रिपोर्टरों और सहायता कर्मियों को खतरनाक जगहों और युद्ध क्षेत्रों में भी सुरक्षा हासिल है और उन्हें किसी भी कीमत पर निशाना नहीं बनाया जा सकता। इसलिए अब वक्त आ गया है कि विश्व समुदाय इसराइल के इन अपराधों का जवाब मांगे और अपराधियों की जिम्मेदारी तय करे। तो दोस्तों, कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अनुमति दीजिए।
ये तेहरान है, इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आजकल, और अब समय मुख्य समाचारों के सारांश का। करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम के निकट अल अकीला ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहि के प्रांगण में आग लग गई। ईरान और सऊदी अरब के विदेश मंत्री इराक के राजधानी बगदाद में मुलाकात करेंगे। रूस ने इसराइली युद्धक विमान पर हमला किया। अतिवादी हिंदुओं ने मध्य प्रदेश में मस्जिद में आग लगा दी। श्रोताओ, हमारा ये कार्यक्रम आप शॉर्टवेव में 25 मीटर बैंड बराबर 11,860 किलोहर्ट्ज़ पर सुना। इसी के साथ हमारा ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। ताज़ा समाचारों से अवगत होने के लिए हमारी वेबसाइट का पता नोट कर लें, pastoday.com/hi। तो श्रोताओ, खुदा हाफिज़, शुभरात्रि। Thank you.